أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستوں السلام علیکم میں آپ کے سامنے ایک بار پھر نماز جماعت سے سمبندھت کچھ مسئلوں کو لے کر اپستھت ہوا ہوں۔ ہم نے اپنی پچھلی بات چیت کو جس استھان پر چھوڑا تھا وہ امام جماعت کی شرطوں سے سمبندھت کچھ بات چیت تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اسی بات چیت کو ہم اپنے آج کے کاریکرم میں آپ کے سامنے آگے بڑھائیں گے۔ اس میں ایک مسئلہ جو نماز جماعت میں دھیان رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، یعنی ایک ویکتی ہے اس کا دائتو یہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھے، تو وہ ایسے ویکتی کے پیچھے جماعت کی نیت سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے جو سوئم بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہو یا لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہو۔ یہ مسئلہ ہے، یعنی اگر میرا مان لیجئے دائتو یہ ہے، میرا فریضہ یہ ہے کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں، یعنی میں مریض نہیں ہوں، کچھ ایسی پرابلم نہیں ہے مجھے، تو میرا فریضہ یہ ہے کہ مجھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اب اگر میں جماعت سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو میرے لیے آوشک یہ ہوگا کہ کسی ایسے ویکتی کے پیچھے نماز پڑھوں جو سوئم کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہو۔ میں کسی ایسے ویکتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں جو سوئم بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہو یا لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہو، یعنی کسی کارن بیٹھ یا لیٹ کے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والا ویکتی جماعت کی نیت سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ کہ اگر امام جماعت کسی کارنوش وضو کے بدلے تیمم یا غسل کے بدلے تیمم یا وضو جبیرہ آدی کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کے پیچھے ایک عام ویکتی جو وضو کیے ہوئے ہے یا غسل کیے ہوئے ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی امام جماعت کی استھتی کیا ہے؟ امام جماعت کی استھتی یہ ہے کہ وہ تیمم کیے ہوئے یا وضو جبیرہ کیے ہوئے، یعنی نہ عام وضو کیے ہوئے نہ غسل کی استھتی میں ہے، اس پرکار نہیں ہے۔ تو اب ایک عام ویکتی جو وضو یا غسل کی استھتی میں ہے کیا وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ ہاں، ایسی صورت میں انسان ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، ایسی جماعت میں کوئی آپتی نہیں آئے گی، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جو مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ جو امام جماعت ہے یعنی جو نماز پڑھانے والا ہے کسی کارنوش نجس لباس میں نماز پڑھ رہا ہے، یعنی کوئی ایسا کارن پیش آ گیا جس کی وجہ سے یہ امام جو ہے اس کا وسر جو ہے نجس ہے اور اسی نجس وسر میں نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا ایک ویکتی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا ہے؟ تو یہاں پر ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ایک عام ویکتی کو جو پوتر وستروں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کو ایسے امام کے پیچھے جو کسی کارنوش نجس وستروں میں نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے جماعت سے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ تھوڑا سا بھن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے میں بھی کوئی آپتی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی ایک عام ویکتی جو پوتر وستروں میں نماز پڑھ رہا ہے وہ کسی ایسے امام کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتا ہے جو کسی کارنوش نجس وستروں میں نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو دھیان رکھی جانا چاہیے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو معموم ہے یعنی جو پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کی قرات اور اس کا لہجہ عربی اعتبار سے، عربی آدھار پر زیادہ اچھا ہے اس امام سے جو نماز پڑھا رہا ہے، تو کیا ایسے ویکتی کو جو سوئم اچھی قرات جانتا ہے اس کو اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے جس کی قرات اس سے اچھی نہیں ہے؟ تو یہاں پر ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اس میں کوئی آپتی نہیں، وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے بتائی نماز جماعت سے سمبندھت۔ اب اگر ہم ایک چارٹ کی صورت میں یا ایک سارانش کے طور پر بتانا چاہیں کہ کون سی نماز جماعت کس استھتی میں کیسے پڑھی جا سکتی تو اس پرکار ہو سکتی ہے، یعنی نماز جماعت اور نمازوں کی استھتی اس پرکار سے ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی استھتی یہ ہے کہ جو امام جماعت ہے وہ यौमिया यानि रोज़ाना की नमाज़ों की अदा नमाज़ पढ़ रहा है, और उसके पीछे जो मामूम है वो भी यौमिया नमाज़ों की अदा नमाज़ें पढ़ रहा है, तो क्या इस स्थिति में अदल बदल बदला हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर हमारे फुकहा कहते हैं अगर यौमिया नमाज़ पढ़ी जा रही, इमाम जमात अदा पढ़ रहा है और मामूम भी अदा पढ़ रहा है, तो इसमें नमाज़ों का एक रूप और समानांतर होना आवश्यक नहीं है, बल्कि ऐसा हो सकता है कि इमाम जमात की नमाज़ असर की हो, अदा पढ़ रहा हो, और मामूम जो है वो ज़ुहर की पढ़ रहा हो और अदा पढ़ रहा हो, यानी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी सूरत में इंसान इमाम जमात के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है, यानी समानांतर होना आवश्यक नहीं है, एक जैसा होना आवश्यक नहीं है। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि इमाम जमात जो है वो भी कज़ा रोज़ाना नमाज़ों की कज़ा पढ़ रहा है और मामूम भी रोज़ाना की नमाज़ों की कज़ा पढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे फुकहा कहते हैं कि अगर इमाम जमात भी कज़ा पढ़ रहा है और मामूम भी कज़ा पढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी नमाज़ों का समानांतर और एक जैसा होना आवश्यक नहीं है, बल्कि हो सकता है कि इमाम जमात ज़ुहर की कज़ा नमाज़ पढ़ रहा और उसके पीछे जो मामूम खड़ा है जमात की नियत से उसी के पीछे सुबह की नमाज़ कज़ा पढ़ रहा हो। यानी अगर ऐसी स्थिति में नमाज़ हो रही तो जमात में कोई आपत्ति नहीं, उसकी ज़ुहर की नमाज़ हो जाएगी और उसकी सुबह की नमाज़ भी जमात से हो जाएगी, इसमें कोई इश्काल पेश नहीं आएगा। तीसरी सिचुएशन जो हो सकती है वो ये है कि इमाम जमात जो नमाज़ पढ़ रहा है वो उसकी अदा है और जो मामूम है कज़ा है। जैसे मान लीजिए कि हम मस्जिद में पहुँचे, ज़ुहर की नमाज़ चल रही थी और इमाम जमात अदा नमाज़ पढ़ रहा था, हमने सुबह की नमाज़ नहीं पढ़ी थी, अब हम चाहते हैं कि इसी ज़ुहर की नमाज़ में जो इमाम जमात पढ़ रहा है उसके पीछे हम सुबह की अपनी कज़ा पढ़ लें, तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति में नमाज जमात पर कोई आपत्ति नहीं, कोई मुश्किल नहीं, नमाज़ों का समानांतर और एक जैसा होना आवश्यक नहीं है, बल्कि अगर इमाम जमात अदा और मामूम कज़ा पढ़ रहा है तो उसकी जमात सही होगी, चाहे भले ही इमाम जमात की नमाज़ ज़ुहर की हो और जो मामूम पढ़ रहा है वो कज़ा पढ़ रहा है वो नमाज़ सुबह की हो, पढ़ सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद जो स्थिति पेश आती है, जो हो सकती है स्थिति, वो ये है कि ख़ुद इमाम जमात जो पढ़ रहा है वो कज़ा नमाज़ थी और जो मामूम पढ़ना चाहता है वो अदा है। मान लीजिए कहीं ऐसी सिचुएशन पेश आती है कि कोई इंसान किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे नमाज़ पढ़ना चाहता है जो ज़ुहर की नमाज़ कज़ा पढ़ रहा था, अब वो चाहता है कि उसके पीछे वो अपनी ज़ुहर की नमाज़ अदा यानी जो अभी चल रही है वो पढ़ ले, तो इस ऐसी सिचुएशन में भी हमारे फुकहा ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति में भी नमाज जमात पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, नमाज जमात ऐसी स्थिति में भी उसके पीछे पढ़ सकता है और नमाज जमात सही होगी। उसके बाद जो स्थिति पेश आती नमाज जमात में, नमाज आयात में भी हो सकती है कि नमाज आयात भी वो नमाज है जो वाजिब होती है, जैसे जलजले के कारण वाजिब हो जाती है, सूरज ग्रहण के कारण वाजिब हो जाती है, चंद्र ग्रहण के कारण वाजिब हो जाती है, काली आंधी आ जाए तो वाजिब हो जाती है। इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें हैं जिनके कारण नमाज आयात वाजिब हो जाती है, और नमाज आयात जमात से पढ़ी जा सकती है। तो क्या नमाज आयात में जिस समय नमाज आयात पढ़ी जा रही, उस समय नमाज आयात जो पीछे पढ़ने वाला व्यक्ति उसकी नमाज का एक जैसा होना आवश्यक है? यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह कि यहाँ पर हम जो बात करें नमाज आयात के बारे में बात है, नमाज आयात कई कारणों से वाजिब होती है। अब अगर मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है कि इमाम जमात जो नमाज आयात पढ़ रहा है वो जलजले के कारण आने वाली नमाज आयात जो वाजिब हुई थी वो पढ़ रहा है, अब उसके पीछे जो व्यक्ति नमाज जमात पढ़ना चाहता है आयात की वो है चंद्र ग्रहण के कारण, क्या ऐसे हो सकता है? यानी उसकी जलजले वाली नमाज आयात है और मेरी जो मैं पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ चंद्र ग्रहण वाली नमाज आयात है। तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है और नमाज जमात पढ़ सकता है। उसके बाद एक और सिचुएशन जो हो सकती है नमाज जमात की स्थिति, वो ये है कि जो इमाम जमात है उसकी नमाज़ कसर है और जो मामूम है उसकी नमाज़ पूरी है। तो क्या एक मामूम जो पूरी नमाज़ पढ़ रहा है एक ऐसे व्यक्ति के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है जिसकी नमाज़ कसर हो? तो हमारे फुकहा कहते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मकरूह है, इंसान को नहीं पढ़ना चाहिए कि यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी नमाज़ पूरी हो उसके लिए ऐसे व्यक्ति के पीछे नमाज़ पढ़ना जिसकी नमाज़ कसर हो मकरूह है, और इसके जस्ट उलट भी मकरूह है। तो ये वो चीज़ें थीं जो नमाज में विभिन्न प्रकार की स्थितियां पेश आ सकती थीं, यानी इमाम जमात कैसा हो सकता है और मामूम की इनकी स्थिति क्या हो सकती है, जो हमने आपके सामने बयान की। उसके बाद जो नमाज जमात से संबंधित मसले हमारे सामने पेश आ सकते हैं वो ये है कि अगर इमाम जमात अपनी यौमिया ही कज़ा नमाज़ पढ़ रहा है और उसके पीछे कोई इंसान अपनी दूसरी नमाज़ पढ़ना चाहता है, जैसे कि हमने आपके सामने बताया कि मसलन उसकी कज़ा नमाज थी जोहर की, अब हम पहुँचे उसके पीछे जाके हम मगरिब की कज़ा नमाज या मगरिब की अदा नमाज़ पढ़ना चाहते, तो हमारे लिए मसला क्या होगा? यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं कि पढ़ सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो उसकी कज़ा है वो यकीनी कज़ा हो, यानी उसको पता हो कि हाँ ये जोहर की नमाज़, यानी जो इमाम नमाज़ पढ़ रहा है वाकई जोहर की नमाज़ उसकी कज़ा हुई थी इसलिए वो जोहर की नमाज़ पढ़ रहा है, तो हम उसके पीछे अपनी मगरिब की कज़ा या अदा नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमको ये लगा कि ये जो इमाम नमाज़ पढ़ रहा है जोहर की कज़ा वो एहतियातन पढ़ रहा है, कि उस एहतियातन उसने नमाज जोहर की कज़ा पढ़ रहा है, तो अगर वो एहतियातन कज़ा पढ़ रहा है तो मैं अपनी यकीनी कज़ा को उसके पीछे नहीं पढ़ सकता हूँ जमात से। हाँ, अगर मैं भी एहतियातन कज़ा पढ़ना चाहता हूँ तो पढ़ सकता हूँ, यकीनी कज़ा जमात से उसके पीछे नहीं हो सकती है। तो ये वो चीज़ थी जो हम जिस समय नमाज़ पढ़ने के लिए एक इमाम के पीछे खड़े हो रहे हैं उस समय हमको ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कुछ ऐसे कारण या कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर नमाज जमात सही नहीं है, यानी अगर जमात से नमाज़ पढ़ी जाए तो जमात से नमाज़ सही नहीं होगी। सबसे पहला स्थान कि जितनी भी मुस्तहब नमाज़ें हैं उनको जमात से नहीं पढ़ा जा सकता है, अगर वो नमाज़ जमात से पढ़ी जा रही हो तो नमाज़ें बातिल हैं, नमाज सही नहीं होंगी। केवल नमाज बारान, यानी वो नमाज जो वर्षा के लिए पढ़ी जाती है, एक नमाज तलब बारान है, यानी अगर कहीं सूखा पड़ जाता है तो कुछ लोग कुछ विशेष परिस्थितियों में वो नमाज़ पढ़ते हैं ईश्वर से बारिश के लिए, तो ये नमाज़ इंसान जमात से पढ़ सकता है। इसी प्रकार वो मुस्तहब नमाज़ें जो पहले तो वाजिब थीं लेकिन गैबत इमाम ज़मान के में वो नमाज़ें मुस्तहब हो गईं, जैसे नमाज ईद हैं, तो इनको भी जमात से पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा जितनी भी मुस्तहब नमाज़ें हैं उनमें से किसी को भी जमात से नहीं पढ़ा जा सकता है, अगर कोई व्यक्ति जमात से पढ़ता है तो वो बिदअत कर रहा है और उसकी नमाज़ सही नहीं होगी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली है, किसी भी यौमिया यानी रोज़ाना पढ़े जाने वाली नमाज को नमाज आयात और नमाज मैयत और नमाज एहतियात के साथ नहीं मिलाया जा सकता है। यानी क्या मतलब? यानी हमारी यौमिया नमाज है, हम रोज़ की नमाज़ें पढ़ना चाहते हैं, यानी मान लीजिए हमारी जोहर की नमाज़ है, हम जोहर की नमाज़ किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे जमात से नहीं पढ़ सकते जो मान लीजिए आयात की नमाज़ पढ़ा है, नमाज आयात अगर पढ़ रहा है तो एक व्यक्ति उसके पीछे यौमिया नमाज़ की अदा या कज़ा नहीं पढ़ सकता है। इसी प्रकार अगर इंसान नमाज मैयत पढ़ रहा है या नमाज एहतियात पढ़ रहा है, इस प्रकार की नमाज़ अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसके पीछे इंसान रोज़ाना की नमाज़ों की इक्तदा या उसके पीछे जमात से नमाज नहीं पढ़ सकता है। और इसके उलट भी नहीं हो सकता, यानी अगर कोई इंसान यौमिया नमाज़ पढ़ रहा था उसके पीछे कोई चाहे कि हम नमाज आयात को जमात से पढ़ लें तो इसके उलट भी नहीं हो सकता है और ये सही नहीं होगा। अगर पढ़ता है तो नमाज़ उसकी सही नहीं है। उसके बाद एक और नमाज जो वाजिब होती है, लेकिन हमारे फुकहा में थोड़ा सा मतभेद पाया जाता है, कुछ कहते हैं कि इसको जमात से पढ़ा जाता है, कुछ कहते हैं नहीं पढ़ा जाता है, वो है नमाज तवाफ़। ये वो नमाज है जो हज में वाजिब होती है कि जब इंसान हज पे जाता है तो तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज वाजिब होती। तो क्या इस नमाज को इंसान जमात से पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है? तो यहाँ पर आयतुल्ला सीस्तानी ये कहते हैं कि इस नमाज की शरई हैसियत के यानी जमात के शरई हैसियत के बारे में कोई साबित कथन नहीं पाया जाता, यानी इसको जमात से नहीं पढ़ा जा सकता है। उसके बाद अगर इंसान को ये ना पता हो, यानी इंसान मस्जिद पहुंचा, इंसान को ये नहीं पता है कि जो इमाम जमात नमाज़ पढ़ा है वो नमाज यौमिया है या कोई और नमाज है या मुस्तहब नमाज है, यानी अगर एक इंसान मस्जिद पहुंचता है, देखता है एक व्यक्ति नमाज़ पढ़ रहा है, अब उसको ये नहीं पता कि ये जो नमाज़ पढ़ रहा है ये जो है यौमिया नमाज है, मसलन जोहर की नमाज़ है, आसर की नमाज़ है, या कोई मुस्तहब नमाज नाफिला नमाज़ पढ़ रहा है, तो क्या ऐसे व्यक्ति की नमाज, चूँकि नहीं जानता, क्या ऐसे व्यक्ति की पीछे नमाज वो जमात से पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है? तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर उसको नहीं पता है कि इमाम जो नमाज़ पढ़ रहा है वो यौमिया है या मुस्तहब नमाज, तो उसके पीछे जमात से नमाज़ नहीं पढ़ सकता है। तो ये वो मसले थे जो जमात से संबंधित। इसके बाद भी और भी कुछ मसले हैं जो जमात से संबंधित हैं, हम उसको आपके सामने अगले प्रोग्रामों में इंशाल्लाह बयान करते रहेंगे। तब तक के लिए हमारी प्रतीक्षा कीजिए, हम आपके सामने इंशाल्लाह अवश्य उपस्थित होंगे। मैं आप सभी को ईश्वर के सुपुर्द करता हूँ। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।